सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् अन्ताय मच्छरहिया जाय जरा मरणनंत पोरढा संसार लयातमहं जीर्णच्छिन्नाजिनं वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। आज से यहाँ हमारी तृतीय पुस्तक शुरू हो जाती है और उसमें स्थिति विभक्ति नाम का अर्थाधिकार यहाँ चलेगा। पहले हमने कौन से अर्थाधिकार देखा था? प्रकृति विभक्ति। अब यहाँ स्थिति विभक्ति चलेगी। अभी जो हमने मंगलाचरण देखा है उसका अर्थ देखते हैं। क्या हुआ, क्या लिखा है उसमें? तृतीय क्या लिखा है शुरू में? स्थिति विभक्ति नहीं है उसमें, वो चौथा। बाहर कुछ अलग लिखा था, अंदर कुछ अलग था ना। तृतीय लिखा है? नहीं नहीं, मैंने लिया था, आपके पास भी वैसा ही है। अब मैंने जो पढ़ा ऐसा है आपके उसमें। हाँ, बाहर मैंने बोला ना, बाहर और अंदर कुछ अलग अलग लिखा था, ये चौथा है लगता है। उसमें से देख लेना, थर्ड एडिशन चौथा। हाँ, वो बाहर कहीं गलत लिखा होगा, इन उनके साथ देखना। नहीं नहीं, मैंने दिया था, दो वॉल्यूम दिए थे ना, एक ही दिया था। नहीं, वो आगे वाला है। चलो अभी हम पढ़ेंगे। अभी जो मंगलाचरण हमने देखा है, अंताई मध्य रहिया, अंत आदि यानी आदि अंत और मध्य रहित। देखो, जिन्होंने आदि मध्य और अंत से रहित किसके लिए उपमा दी है, जिसको आदि नहीं मध्य नहीं अंत नहीं, ऐसे संसार बेल, और कैसे? तथा जाति, जाति यानी जन्म, जरा और मरण रूपी अनंत पोरों से व्याप्त संसार रूपी बेल। बेल होती है, उसमें पोर होते, पोर यानी वो जैसे जॉइंट होते। हाँ, तो उसको पोर कहते। तो ऐसे जो पेर पोर है, जिसमें अनंत क्या है, अनंत जन्म जरा और मृत्यु, ऐसे व्याप्त संसार रूपी बेल को छेद दिया है, उन जिन देव को मैं वीरसेन स्वामी नमस्कार करता हूं। विशेषार्थ, यहां संसार को बेल की उपमा दी है। बेल का आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है, तथा उसकी पोरे भी स्वल्प होती है, पर यह संसार ऐसी बेल है जो संतान क्रम से यानी प्रवाह क्रम से अनादि चला आ रहा है, और अनंत काल तक चलता रहेगा, अतः उसके आदि मध्य और अंत का निर्णय नहीं किया जा सकता तथा उसमें अनंत जन्म जरा और मरण होते रहते हैं। ऐसी संसार रूपी बेल को जिनेंद्र देव ने छेद दिया है, उन्हें मैं वीरसेन स्वामी नमस्कार करता हूँ। ये जरा का अर्थ मालूम है? जरा क्या होती है? बुढ़ापा। हाँ, यहाँ प्रश्न होता है, जिसके आदि मध्य और अंत का पता नहीं, उसका छेद कैसे किया जा सकता है? समाधान यह है, यद्यपि नाना जीवों की संतान की अपेक्षा संसार आदि मध्य और अंत से रहित है, फिर भी कोई एक भव्य जीव उसका अंत कर सकता है। यानी वो अनंत जीवों की अपेक्षा संसार हमेशा ही चलता रहेगा, उसके कोई आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है, फिर भी जो भव्य जीव है उसमें से कई जीव संसार का अंत करके निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उक्त मंगल गाथा में वीरसेन स्वामी ने दोनों प्रकार के संसार के स्वरूप का निर्देश कर दिया है। कौन से दो प्रकार के संसार? हाँ, ये अनादि अनंत और भव्य जीव जो उसको शांत कर देता है, इस तरह से दो प्रकार हो गए। अब यहाँ जो ऊपर सूत्र लिखा है वो कौन सा सूत्र है हमें पता है ना? चूर्णी सूत्र का है, जहाँ ये फूल जैसे चिन्ह बनाया है ऊपर प्राकृत में, वो चूर्णी सूत्र है, उसको हम पढ़ेंगे। ठिदि विहत्ति दुविहा मूल पयड़ी ठिदि विहत्ति चेव उत्तर पयड़ी ठिदि विहत्ति चेव। अभी तक हमने प्रकृति विभक्ति इतना ही देखा था, उसमें कितनी प्रकृतियां है क्या है उसकी चर्चा है। अब यहाँ स्थिति की बात चलेगी, उसमें मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति और उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति, नीचे उसका अर्थ देखते हैं। स्थिति विभक्ति दो प्रकार की है, मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति और उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति। शंका, स्थिति विभक्ति यह अधिकार किस लिए आया है, यानी उसका कथन करने की क्या जरूरत है, इसके अधिकार की जरूरत क्या है? उसका समाधान, पहले जिस शिष्य को प्रकृति विभक्ति नामक अधिकार के द्वारा मोहनीय की 28 प्रकृतियों के स्वभाव का ज्ञान करा दिया गया है, उसे प्रवाह की अपेक्षा आदि रहित और प्रत्येक समय में बंधने वाले एक एक समय प्रबद्ध विशेष की अपेक्षा सादी तथा शांत क्या कहते हैं? पहले हमने प्रकृति विभक्ति देखी है, मोहनी की जो 28 प्रकृतियां है उसमें अनादि से कितनी होती है, वो 28 कब होती है, कितनी कितनी कौन से जीव को होते हैं, उसके स्वामित्व काल अंतर सब हमने विस्तार से देखा है। अब कहते हैं ऐसा ज्ञान हुआ है अभी, अब प्रवाह की अपेक्षा वो कैसा है, तो आदि रहित है। मोहनी के प्रकृतियां जो है उसकी सत्ता जो है अनादि से ही है, यानी आदि रहित है, परंतु प्रत्येक समय में एक एक समय प्रबद्ध बनता है। समय प्रबद्ध है ना, एक समय में बंधने वाले जो समूह है परमाणुओं का उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। तो उसकी स्थिति तो निश्चित है, कितने स्थिति वाला है, तो उस अपेक्षा वो उसको सादी कहेंगे और प्रवाह की अपेक्षा अनादि कहेंगे। और एक एक समय प्रबद्ध है तो उसको सादी भी है और उसका अंत भी है, क्योंकि विशिष्ट समय में बंधी हुई है तो विशिष्ट काल तक जीव के साथ रहकर फिर वो निकल जाएगी। तो कहते एक एक समय प्रबद्ध विशेष की अपेक्षा सादी तथा शांत उन्हीं मोहनीय की 28 कर्म प्रकृतियों की 14 मार्गणाओं के आश्रय से जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का कथन करने के लिए यह स्थिति विभक्ति नामक अधिकार आया है। क्या कहना चाहते हैं? हम कितनी प्रकृति की स्थिति कितने इतना ही हम देखते हैं, यहाँ तो 14 मार्गणाओं में अलग अलग मार्गणाओं में कितनी स्थिति होती है मोहनीय की, उसका यहाँ विस्तार से वर्णन होगा, क्योंकि पूरी पुस्तक ही स्थिति विभक्ति के लिए है। वह स्थिति विभक्ति मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति और उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति के भेद से दो प्रकार की है। आज से तीसरी पुस्तक चालू होती है। हाँ, शंका, वह तीन प्रकार की क्यों नहीं है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति और उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति को छोड़कर प्रकृतियों की अन्य स्थिति नहीं पाई जाती। अतः स्थिति विभक्ति तीन प्रकार की नहीं होती, यानी मूल प्रकृतियों की स्थिति और उत्तर प्रकृतियों की स्थिति, इतने ऐसे दो ही भेद हो गए, अन्य कोई उसका भेद नहीं पाया जाता, इसलिए यहां दो का ही कथन किया है। शंका, नौ कर्म प्रकृतियों के रूप और रसादि की स्थितियां पाई जाती है। ये नौ कर्म किसको कहते हैं? ये कर्म प्रकृति तो समझे, नौ कर्म प्रकृति कौन सी है? हाँ हाँ, शरीर मन वाणी आदि के जो परमाणु है उसको नौ कर्म कहते हैं, यानी कर्मण वर्गणा, यानी कर्म शरीर को छोड़कर अन्य जो चार है उसको नौ कर्म शरीर कहते हैं, और उनके परमाणु की जो ग्रहण होता है उसकी भी उसमें भी स्थिति होती है। ग्रहण होता है तो वहाँ कितने काल के लिए वो जीव के साथ रहेंगे ये निश्चित होता है, इसीलिए यहाँ कहते हैं नौ कर्म प्रकृतियों के रूप और रसादिक की स्थितियाँ पाई जाती है, उनका यहाँ कथन क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं, क्योंकि कर्म प्रकृतियों की स्थिति की प्ररूपणा करते समय नौ कर्म की स्थिति की प्ररूपणा करना असंभव है, अतः यहाँ नौ कर्म प्रकृतियों की स्थितियों का ग्रहण नहीं किया है। शरीर संबंधी जो परमाणु का ग्रहण होता है उसमें भी निषेक रचना होती है, वो अलग विषय है, यहाँ तो कर्म प्रकृतियों संबंधी ही चर्चा चलेगी, और वो भी सभी कर्मों की नहीं, मोहनीय की, ये हमने पहले देखा था। शंका, मूल प्रकृति स्थिति किसे कहते हैं? एक उसकी चर्चा क्यों, इसकी तो वहां पर हो गया, अभी इसको कहना किसको मूल प्रकृति स्थिति, उसका समाधान। प्रकृति सामान्य की अपेक्षा, देखो प्रकृति सामान्य ने वो सामान्य, जैसे ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां होती है, ज्ञाना मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, उसमें ज्ञानावरण ये सामान्य है, तो प्रकृति सामान्य की अपेक्षा एकत्व को प्राप्त हुई 28 प्रकृतियों की जो स्थिति विशेष है उसे मूल प्रकृति स्थिति कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पूरा मोहनीय इकट्ठा कर दिया, प्रकृति सामान्य ने वो सभी कैसी प्रकृतियां है, मोहनीय की है, उसमें भले 28 भेद है परंतु हम उसको क्या कहेंगे, मोहनीय, मोहनीय कर्म। मूल प्रकृति कौन सी है? मोहनीय कर्म, यह प्रकृति सामान्य हुआ। अब उसकी जो स्थिति विशेष है, नहीं विशिष्ट स्थिति है, मोहनीय कर्म की जो स्थिति है उसको मूल प्रकृति स्थिति कहेंगे। ये मूल प्रकृति एक मोहनीय। शंका, जबकि सब प्रकृतियों की स्थितियां अलग अलग हैं, तब उनमें एकत्व कैसे हो सकता है? जब कहेंगे कि प्रकृति सामान्य की अपेक्षा एकत्व है, तो यहां कह रहे हैं हर एक की स्थिति तो अलग अलग है, दर्शन मोहनी की अलग है, चारित्र मोहनी की अलग है, तो उनमें एकत्व कैसा है? उसमें और भी उत्तर भेद करो को उसकी भी स्थितियां अलग अलग है, जैसे नौ कषाय उनकी अलग अलग प्रकृतियों की स्थिति अलग अलग है, तो उनमें एकत्व समानता कैसे हो सकती है? उसका समाधान, प्रकृति सामान्य की अपेक्षा सभी प्रकृतियां एक है, अतः उनकी स्थितियों में एकत्व मानने में कोई बाधा नहीं आती। जब मोहनीय की स्थिति कितनी है ऐसा पूछेंगे तो उसमें जो कोई उत्कृष्ट और जघन्य होगी तो उसका कथन होगा, तो उसकी अपेक्षा से एकत्व कह देंगे। यदि कहा जाए कि प्रकृतियों की सदृशता असिद्ध है, सो भी बात नहीं है। सदृशता असिद्ध है ने वो विसदृश है ऐसा कोई कहते हैं तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि मोह प्रकृति के उत्पन्न होने के पहले समय से लेकर जब तक उसका विनाश नहीं होता तब तक उसका मोह प्रकृति रूप से ही अवस्थान पाया जाता है, इसलिए उनमें सदृशता मानने में कोई बाधा नहीं आती। यहाँ प्रकृतियों में सदृशता बताई जा रही है, उनकी स्थितियों में नहीं। 28 प्रकृतियों में किसी भी प्रकृति का नाम लो, बनने के समय से लेकर अंत तक उसको मोह की प्रकृति ही कहेंगे हम। मोहनी की प्रकृति बदल कर ज्ञानावरण हो जाए ऐसी नहीं होती बात, मूल प्रकृति तो वो मूल प्रकृति रूप ही रहते हैं। इसलिए उनमें सदृशता है ऐसा हम कहेंगे, क्योंकि कौन सा साम्य है, बस वो सभी मोहनीय की प्रकृतियां हैं, यही उनमें सदृशता है। फिर शंका, मोह कर्म की सामान्य स्थिति आदि रहित अर्थात अनादि है, अतः उसकी प्ररूपणा कैसे की जा सकती है? कि मोह कर्म तो अनादि से है, तो उसकी स्थिति कैसे बता सकते हैं आप, उसके प्ररूपणा भी कैसे होगी, प्ररूपणा ने कथन कैसे कर सकते हो? उसका समाधान नहीं, क्योंकि प्रवाह रूप से अनादिकालीन मोह कर्म की स्थिति को छोड़कर एक समय में जो मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है, जो कि मोह प्रकृति सामान्य की अपेक्षा एक है, उनकी स्थिति की यहाँ प्ररूपणा की गई है, इसलिए कोई दोष नहीं है। प्रवाह रूप से ने अनादि से ही जीव और कर्म का बंध पाया जाता है, ऐसा नहीं कि पहले शुद्ध था जीव और बाद में उसको बंध हुआ हो, तो अनादि से ही ये है मोहनीय भी है जीव के साथ, तो उसका तो अनादि कहेंगे, परंतु जो नया नया बंध होता है उसको तो आदि है। तो एक समय में जो बंधने वाले हैं मोहनीय कर्म की प्रकृतियां, उसमें तो स्थिति की प्ररूपणा बनती है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। फिर शंका, यदि ऐसा है तो मूल प्रकृति स्थिति कैसे बन सकती है? क्या कहते हैं, वो अलग अलग प्रकृतियां उनकी स्थिति बंधेगी, तो उसको मूल प्रकृति स्थिति कैसे कह सकते हो आप, उन सबकी अलग अलग गिनो? उसका समाधान नहीं, क्योंकि संपूर्ण समय प्रबद्धों का जो प्रकृति समूह है उसे यहां मूल प्रकृति रूप से स्वीकार नहीं किया है, यानी वह अनेक प्रकृतियों के समूह को मूल प्रकृति नहीं कहा यहां पर। तो शंकाकार पूछता है, फिर यहां मूल प्रकृति पद से किसका ग्रहण किया है? उसको कहते हैं, एक समय में बंधे हुए संपूर्ण मोहनीय कर्म के स्कंधों के प्रकृति समूह का यहां मूल प्रकृति रूप से ग्रहण किया है। पहले क्या पूछा था देखो, फिर कि संपूर्ण समय प्रबद्धों का समूह, संपूर्ण ने अनेक समय प्रबद्धों के समूह को मूल प्रकृति नहीं कहा, अनेक समय प्रबद्धों के समूह को नहीं कहा, तो क्या कहते हैं, एक समय में बंधे हुए जितना पूरा स्कंद है मोहनीय का उसको यहाँ मूल प्रकृति रूप से लिया है। दोनों में डिफरेंस समझ में है? वहां तो अनेक समयों में जो बंधे हैं, अनेक समय प्रबद्धों के समूह को नहीं कहा, एक समय में जो पूरा मोहि का स्कंद बना है बंधा है उसको यहाँ मूल प्रकृति कहे। उस मूल प्रकृति की स्थिति को, यानी एक समय में जो कोई बंधेंगे उसको, उस स्थिति को मूल प्रकृति स्थिति कहते हैं, तथा मोहनीय की पृथक पृथक 28 प्रकृतियों की स्थितियों को उत्तर प्रकृति स्थिति कहते हैं, सबको मिलकर जो उनकी स्थिति होगी उसको मूल प्रकृति की स्थिति कहेंगे, और उसमें जो उत्तर भेद है प्रकृतियों के उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति स्थिति। इस प्रकार स्थिति विभक्ति दो प्रकार की ही होती है, मूल प्रकृति विभक्ति और उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति, मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति, उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति। अब शंका, उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति का कथन करने पर मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति का नियम से ज्ञान हो जाता है, अतः उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति का ही कथन करना चाहिए, मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति का नहीं, क्योंकि मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति का कथन करने में कोई फल नहीं है। उत्तर प्रकृति की बात करो ना, उसमें से मूल प्रकृति की बात ख्याल में आ जाएगी। उसका समाधान नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय का, अर्थात द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय वाले शिष्यों का अनुग्रह करने के लिए दोनों स्थितियों का कथन किया है। एक तो सामान्य से कथन होता है सबका मिलकर, और एक होता है एक एक का अलग, उसको कहेंगे पर्यार्थिक नय, और द्रव्यार्थिक समूह रूप से सबके मोहनीय की स्थिति बता देंगे। तो दोनों ही प्रकार से व्याख्यान होते हैं और दोनों ही नए वाले शिष्य के, कौन से नए से जान रहे शिष्य तो उनकी सहूलियत के लिए यहाँ दोनों ही प्रकार का वर्णन है। उपर्युक्त सूत्र में आए हुए दोनों ही च शब्द समुच्चय रूप अर्थ में जानना चाहिए। हमने देखा था ना, मूल सूत्र में दो बार आया है, मूल पैड़ी ठिदि विहत्ति चेव, दूसरे पेज पर उत्तर पैड़ी ठिदि विहत्ति चेव, यानी उनके समूह लेना उसमें। एक ही च शब्द से समुच्चय रूप अर्थ का ज्ञान हो जाता है, अतः दूसरा च शब्द अनर्थक है, इसलिए उसे निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि अर्पित एक नय की अपेक्षा कथन करने पर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, यह अर्पित क्या होता है पढ़ा है कभी तत्वार सूत्र में? कौन सा सूत्र है आगे? क्या अर्पिता निर्पित आगे? क्या सिद्धे है, अर्पिता नर्पित सिद्धे है, यानी मुख्य और गौण वस्तु की सिद्धि होती है ना, तो उसमें अर्पित यानी मुख्य, अनर्पित यानी गौण, मुख्य कहो प्रधान कहो एक ही बात है। तो यहाँ क्या कहते हैं, अर्पित एक नय की अपेक्षा यानी प्रधान यानी मुख्य एक नय की अपेक्षा कथन करने पर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मूल पैड़ी ठिदि विहत्ति उत्तर पैड़ी ठिदि विहत्ति च, इस प्रकार यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन करना है तो मूल प्रकृति विभक्ति उत्तर प्रकृति विभक्ति च, च यानी वो च का अर्थ और, हम हिंदी में और बीच में डालते हैं और संस्कृत में च बाद में डालते हैं अंतिम शब्द के बाद, इस प्रकार। और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा उत्तर पैड़ी ठिदि विहत्ति मूल पैड़ी ठिदि विहत्ति च, इस प्रकार प्राप्त होता है, क्योंकि पहले पर्यायार्थिक नय की बात करेंगे, बाद में उनको इकट्ठा करके मूल प्रकृति की बात करेंगे। अतः एक च शब्द के उच्चारण के सिवाय दूसरे च शब्द का उच्चारण नहीं रहता, अतः पुनरुक्त दोष नहीं प्राप्त होता है। सूत्र में जो एव शब्द आया है, कहाँ लिखा है एव? चेव लिखा है ना, च एव, वह इति शब्द के अर्थ में जानना चाहिए। एव शब्द का अर्थ हम ही भी होता है, ऐसा ही है ना, तो एव का दूसरा अर्थ इति, तो इति अर्थ में भी उसका यहां ग्रहण करना है, क्योंकि यहां उसका अवधारण रूप अर्थ नहीं हो सकता। अवधारण ने हम ही अर्थ में नहीं लिया उसको, परंतु उसको इति शब्द के अर्थ में लेना है विशेषार्थ। यहां स्थिति विभक्ति के दो भेद किए गए हैं, मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति और उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति। मूल प्रकृति पद से, पद यानी शब्द, जब मूल प्रकृति यह शब्द है उससे अवांतर भेदों की गणना न कर, अवांतर भेद यानी उसके और उपभेद, जब मोहिनी कहते तो सभी भेद उसमें गर्भित है, उसमें भेद नहीं करेंगे, बिना भेद किए सभी प्रकृतियों को हम मूल प्रकृति मोहिनी कह देंगे, तो अवांतर भेदों की गणना न कर यानी उसको गौण करके सामान्य मोहिनी कर्म का ग्रहण किया है। यहां मूल प्रकृति में अन्य मूल प्रकृतियों की चर्चा नहीं है, वैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय आदि भी मूल प्रकृतियां हैं, परंतु कषाय पाहुड़ में सर्वत्र वहां यहां मोहिनी की ही बात चलेगी, इसलिए मूल प्रकृति कहने पर मोहिनी इतना लेना है। सामान्य मोहिनी कर्म का ग्रहण किया है और उत्तर प्रकृति पद से यानी शब्द से मोहिनी के प्रत्येक भेद का पृथक पृथक ग्रहण किया है, यानी उत्तर प्रकृति स्थिति में जो 28 अलग अलग जो है उनके अलग अलग पृथक पृथक भिन्न भिन्न कथन होगा उनका। यद्यपि प्रवाह रूप से मोहिनी कर्म अनादि है, पर यहां प्रत्येक समय में जो समय प्रबद्ध प्राप्त होता है, प्राप्त होता है ना, उसका बंद होता है, उसकी स्थिति ली गई है, ये महत्व की बात है। इसलिए स्थिति विभक्ति अवधि बन जाती है। अवधि यानी उसकी मर्यादा होती है, उसकी लिमिट जो है, या उसको हम कहेंगे ना उसकी स्थिति बन जाती है। स्थिति विभक्ति की अवधि बन जाती है, अवधि यानी मर्यादा। ये अवधि ज्ञान में भी हम कहते हैं मर्यादा सहित जानता है, यानी उसकी लिमिट होती है। उसमें जो प्रत्येक भेद की विवक्षा किए बिना सामान्य रूप से मोहिनी की स्थिति प्राप्त होती है, वह मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति है। यहां तो हमें स्थिति की बात करनी है, तो मूल प्रकृतियों की स्थिति बताएंगे। और प्रत्येक भेद की जो स्थिति प्राप्त होती है वह उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति है। यहां सामान्य और विशेष रूप से मोहिनी की स्थिति का ही ग्रहण किया है, इसलिए वह दो प्रकार की बतलाई है। नो कर्म का प्रकरण न होने से वहां उसकी स्थिति का ग्रहण नहीं किया है। सूत्र में दो शब्द आए हैं, सो वे दोनों ही समुच्चयार्थक जानने चाहिए। समुच्चय ने और के अर्थ में उनको संग्रह किया, हमने समुच्चय किया। प्रथम शब्द च शब्द द्वारा मुख्य रूप से मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति का और गौण रूप से उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति का समुच्चय होता है। ये समुच्चय किस किस का है? देखो दो च शब्द है तो दो बार समुच्चय बताए, तो पहले द्रव्यार्थिक ने तो मुख्य किसको किया, तो सामान्य को किया, तो मूल प्रकृति को मुख्य किया और गौण रूप से उत्तर प्रकृति लिया, इसलिए मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति और उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति गौण रूप से। और दूसरे च शब्द के द्वारा मुख्य रूप से उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति का, यानी अभी उसको मुख्य किया। क्यों? पर्यायार्थिक न है, हम चाहे मुख्य गौण किसी को भी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति का और गौण रूप से मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति का समुच्चय होता है, शेष विवेचन स्पष्ट ही है। हमने देखा था ना, ये तो किसको मुख्य करना, ये वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर है। कौन से शिष्य को कैसा समझाना चाहते आचार्य, उसको मुख्य और गौण कहेंगे। तो जब जब पर्यायार्थिक नय का कथन आता है, वो निश्चय है मुख्य है कि गौण है। समय सार में हम देखते हैं ना, राग को, राग की बात चलेगी तो ये मुख्य है कि गौण है, यानी किसको मुख्य करना, हम त्रिकाली को कि राग को। हाँ देखो, जो जिसका कथन हो, पर्यायार्थिक नय की बात चलती हो, मुख्य किसको कहना ये वक्ता की बात है, कैसा समझाना है तो वहां उसको मुख्य करके समझाया जाएगा। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। यदि हम पर्याय को मुख्य करेंगे तो उसको निश्चय कहेंगे। वो हम कहते भी अशुद्ध निश्चय नहीं से राग जीव का, ऐसा कहेंगे, निश्चय नहीं में ले लिया उसको। तो किसको मुख्य करना है वो वक्ता की बात है, परंतु मोक्ष मार्ग में हमेशा ही वो हम जो सामान्य है उसको मुख्य किया जाता है, इसलिए हमें निश्चय नहीं वो आत्मा की बात और व्यवहार है नहीं पर्याय की बात, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, जहां जो जिसको मुख्य किया जाता है उसको निश्चय ऐसा कहेंगे, हम उसको मुख्य करेंगे। तो यहां अभी जो पर्यायार्थिक नय वाला जो है उसके लिए उत्तर प्रकृति को मुख्य किया, और गौण रूप से द्रव्यार्थिक नय वाला ने वो तो मूल प्रकृति की बात की। इनका समुच्चय होता है, शेष विवेचन स्पष्ट ही है। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। पहले तत्थ अठ पदम एगा ठिदी ठिदी विहत्ति अनेगाओ ठिदियो ठिदी विहत्ति। अब उन दोनों स्थिति विभक्तियों के अर्थ पद को कहते हैं। एक स्थिति स्थिति विभक्ति है और अनेक स्थितियां स्थिति विभक्ति हैं। वो है के ऊपर पहले बिंदी नहीं है और बाद में है। क्या कहते हैं? एक स्थिति स्थिति विभक्ति है। एक स्थिति ने वो एक निषेक, उसको हम कहेंगे स्थिति विभक्ति है। और अनेक स्थितियां स्थिति विभक्ति हैं। अब पूर्वोक्त दोनों ही स्थिति विभक्तियों के इस अर्थ पद का खुलासा करते हैं। ये जो यहां बताया है उसका भी यहां स्पष्टीकरण करेंगे, जो इस प्रकार है। एक स्थिति स्थिति विभक्ति है। अब विभक्ति का अर्थ क्या है? विभक्ति, भेद और पृथक भाव, ये तीनों एकार्थवाची शब्द है। विभक्ति का अर्थ क्या करना है? भेद या पृथकता बताने वाला जो भाव, पृथक भाव। और स्थिति की विभक्ति स्थिति विभक्ति कही जाती है, यानी स्थितियों के जो भेद है उसको स्थिति विभक्ति कहेंगे। यतः स्थिति विभक्ति शब्द स्थिति भेद का कथन करता है। क्या कहते हैं? अलग अलग जो स्थिति के भेद है उसका कथन स्थिति विभक्ति से होता है। इसलिए सूत्र में एक स्थिति स्थिति विभक्ति है और अनेक स्थितियां स्थिति विभक्ति हैं, ऐसा कहा था। अब यहां बता रहे कि स्थिति विभक्ति शब्द स्थिति भेद का कथन करता है और इसलिए मूल प्रकृति की स्थिति में विभक्तियां नहीं बनती है, क्योंकि एक में भेद नहीं होता। जब हम मूल प्रकृति की स्थिति बताएंगे तो मूल प्रकृति की सामान्य से कोई एक स्थिति बताएंगे, और जब हर एक प्रकृति की स्थिति बतानी है तो हम उसकी अलग अलग बताएंगे। 28 की जो अलग अलग अपनी अपनी जो है उसको बताएंगे। तो जब मूल की बात हुई तो कि एक ही होगी उसमें, यानी उसमें भेद नहीं होगे, क्योंकि एक में भेद नहीं हो सकता। मूल प्रकृति की स्थिति में विभक्तियां नहीं बनती क्योंकि एक में भेद नहीं होता। यदि एक में भेद माना जाए तो वह मूल प्रकृति स्थिति नहीं ठहरती, क्योंकि एक प्रकृति की अनेक स्थितियां मानने में विरोध आता है। इस प्रकार आक्षेप करने पर एगा ठिदी ठिदी विहत्ति, इस प्रकार कहकर उस आक्षेप का परिहार किया है। क्या कहते हैं? दोनों स्थिति विभक्तियों की बात चली, मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति और उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति। तो मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति के लिए कहा एक स्थिति स्थिति विभक्ति है, क्योंकि उसकी एक ही होती है, उसमें भेद नहीं है। और उत्तर प्रकृतियां अनेक है तो उनमें कहेंगे अनेक स्थितियां स्थिति विभक्ति है उत्तर प्रकृतियों के लिए, क्योंकि है इतना ही कहना है ना वहां पर, तो प्ररूपना तो ऐसी करना है। शंका, एक स्थिति में नानात्व कैसे हो सकता है? मोनि के मूल प्रकृति में जब एक स्थिति बताई है तो उसमें अनेक प्रकार कैसे संभव है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि एक स्थिति में भी प्रदेश भेद और प्रकृति भेद की अपेक्षा नानात्व तो पाया जाता है। जब हम मूल प्रकृति की स्थिति बताएंगे उसमें भी प्रदेश भेद और प्रकृति भेद है। ये प्रदेश भेद क्या होता है? जैसे मूल प्रकृति हम कहेंगे मोहनी के इतने एक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधे, तो उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है दर्शन मोहनी में और चारित्र मोहनी में, और उसमें भी जो सर्वघाती में और देशघाती में, तो प्रदेशों का यानी वो परमाणुओं की जो नंबर है उसमें वेरिएशन है। जैसे अनंत वा भाग वो सर्वघाती में जाता है और अनंत बहुभाग देशघाती में जाता है, तो उसके प्रदेशों में भी अंतर हो सकता है। और वैसे यहाँ हम देखते हैं 26 अलग अलग प्रकृतियां बनती है तो उसमें प्रकृति भेद तो है ही है, ऐसे स्थिति भी भेद मानने में कोई विरोध नहीं है। यदि कहा जाए कि प्रकृति भेद और प्रदेश भेद स्थिति भेद का कारण नहीं है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकृति और प्रदेशों में पाई जाने वाली स्थिति को एक मानने में विरोध आता है। यदि कहा जाए कि मूल प्रकृति स्थिति में प्रकृति भेद असिद्ध है, यानी मूल प्रकृति की स्थिति जो है उसमें प्रकृति भेद नहीं हो सकता, ऐसा अगर कोई कहते हैं सो भी बात नहीं है, क्योंकि मूल प्रकृति स्थिति के भीतर सब उत्तर प्रकृतियों के भेद गर्भित है, अतः उसमें प्रकृति भेद के मानने में कोई विरोध नहीं आता। अथवा विवक्षित मोहनी की मूल प्रकृति स्थिति का शेष ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति स्थितियों से भेद पाया जाता है, इसलिए इस दृष्टि से भी प्रकृत अर्थ का समर्थन कर लेना चाहिए। एक में तो ऐसा बताया कि मूल प्रकृति है, फिर भी उसमें उत्तर प्रकृतियों के भेद गर्भित है, और दूसरी बात ये बताई कि ज्ञानावरणादि भी अन्य जो सात कर्म हैं वो भी मूल प्रकृति है, और उनकी स्थिति में और मोहिनी की स्थिति में भेद है, उस अपेक्षा भी यहाँ वो विभक्ति यानी भेद घटित हो सकता है। अथवा कहकर दूसरा व्याख्यान करते हैं, प्रकृत में यानी यहाँ पर वर्तमान में मूल प्रकृति स्थिति का एकत्व नहीं लिया है, क्योंकि जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक सभी स्थितियों का मूल प्रकृति स्थिति पद के द्वारा ग्रहण किया है, इसलिए मूल प्रकृति के साथ विभक्ति शब्द का प्रयोग बन जाता है। यहाँ क्या कहते हैं, विभक्ति शब्द क्यों लगाया? विभक्ति का अर्थ अभी अभी हमने क्या देखा था, भेद। दूसरा शब्द क्या दिया था, पृथक भाव। तो मूल प्रकृति में भी कभी उत्कृष्ट स्थिति बनती है, कभी जघन्य बनती है, तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक भेद हो सकते हैं, इसलिए उस भेदों की अपेक्षा भी स्थिति विभक्ति ऐसा नाम पड़ेगा। इस विभक्ति का ही अर्थ अलग अलग भेद, तो मूल प्रकृति के स्थिति में ही इतने भेद संभव है, उस अपेक्षा भी यहाँ विभक्ति शब्द लगा सकते हैं। शंका, मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति पद के द्वारा यानी उस शब्द के द्वारा जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक सभी स्थितियों का ग्रहण किया है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक की स्थितियां इसमें है गर्भित, ये कहां से जाना? उसका समाधान, आगे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य स्थितियों के स्वामी का कथन किया है, यानी उत्कृष्ट स्थिति किसके होती है, जघन्य किसके होती है, और दोनों के बीच वाले जघन्य की ओर है उसको अजघन्य कहेंगे, मध्यम भेद है परंतु उत्कृष्ट की तरफ वाला होगा उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। ये चार भेद अभी यहाँ स्थिति में पड़ेंगे। इसके पहले हमने प्रकृति विभक्ति देखी थी ना, उसमें ऐसे भेद थे कि नहीं थे? हाँ, जघन्य उत्कृष्ट थे कि नहीं थे? हाँ, देखो प्रकृति में कोई जघन्य उत्कृष्ट नहीं होता, प्रकृति में तो ध्रुव अध्रुव आदि सादि अनादि ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जहां संख्या है स्थिति कहेंगे प्रदेश कहेंगे उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का सवाल आता है। प्रकृति तो प्रकृति होगी ना, उसको वो ज्ञानावरण की है कि अब मोहिनी में भी भले हमने भेद करके 28 है या 24 है, तो उसमें कोई उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं होता। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कब होगा? अभी जहां हम यहाँ स्थिति गिन रहे, आगे चलकर प्रदेशों को गिनेंगे कितने नंबर ऑफ परमाणु हैं, उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लगेगा। देखो हमने चार प्रकार के बंध पहले देखे थे, कौन से? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो उसमें प्रदेशों में कोई उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं होता है, या तो प्रदेशों में प्रकृति में नहीं होता है, मैंने उल्टा बोला क्या, प्रकृति में कोई उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं होता, प्रदेशों में होता है, स्थिति में होता है और अनुभाग में होता है। अनुभाग में भी हम कहे थे ना जघन्य अनुभाग होगा या उत्कृष्ट अनुभाग होगा, तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि ये आपने कहाँ से जाना ये प्रमाण, उसका समाधान अभी पढ़ रहे हैं। आगे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य स्थितियों के स्वामी का कथन किया है, आगे आना ही वाला है विषय, और मूल प्रकृति के स्थिति स्थानों का भी कथन किया है। स्थिति स्थान का अर्थ क्या है? जैसे मिनिमम पॉसिबल जो स्थिति है, हम मान लेते हैं अभी 20 समय से लेकर 100 समय तक, अभी इतने समयों में तो नहीं होती है, सागरों में या किसी में पढ़ेंगे हम, तो कहते हैं मिनिमम कितने, अभी हमने 20 समय और मैक्सिमम 100 समय, तो स्थान कितने हुए, 20 को भी गिनो और 100 को भी गिनो, तो 100-20+1 81 स्थान हो गया अलग अलग, 20 वाला एक स्थान, 21 वाला एक स्थान, 22 वाला एक स्थान, उसको स्थिति स्थान कहेंगे। तो ऐसे ये मूल प्रकृतियों के जो अलग अलग स्थिति स्थानों का भी कथन किया है, इससे जाना जाता है कि यहाँ मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति पद के द्वारा जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक सभी स्थितियों का ग्रहण किया है। ये बात ख्याल में आई? विभक्ति क्यों कहा कि उसमें भेद करके बता रहे हैं, जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक, एक एक से समय, एक एक समय से बढ़ते हुए स्थितियां होगी अलग अलग। इसलिए प्रकृति रूप से एक स्थिति अपने स्थिति भेदों की अपेक्षा स्थिति विभक्ति होती है, यह सिद्ध होता है। क्या कहते हैं? प्रकृति रूप से तो उसकी एक ही, ये मोहनीय की स्थिति कहेंगे या यह मिथ्यात्व की स्थिति कहेंगे, फिर भी उसमें भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट अनेक भेद हो गए। एक जो प्रकृति है, प्रकृति बंधी ऐसा ही कहेंगे, परंतु उसमें स्थिति कितनी बंधी, तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक उसके भेद हो सकते। यदि मूल प्रकृति में स्थिति विभक्ति है तो उत्तर प्रकृतियों की स्थितियों में भेद नहीं रह सकता है, क्योंकि मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों में परस्पर विरोध है। इस प्रकार का आक्षेप करने पर ऐसी कोई शंका उठाता है कि मूल प्रकृतियों में भेद किए, अब उत्तर प्रकृति में मत करो, हो नहीं सकते, ऐसा कोई आक्षेप करता है तो उसको कहते अनेकाओ ठिदियो ठिदी विहत्ति, इस प्रकार परिहार कहा है, यानी अनेक स्थितियां स्थिति विभक्ति है। अभी हमने सूत्र पढ़ा था ना, एक स्थिति स्थिति विभक्ति है और अनेक स्थितियां स्थिति विभक्ति हैं, ऐसा दोनों ही प्रकार से कथन किया था। यदि एक प्रकृति की स्थितियों में अपने स्थिति विशेष की अपेक्षा भेद हो सकता है तो उत्तर प्रकृतियों की स्थितियों में अपने स्थिति भेद की अपेक्षा और अपने से भिन्न अन्य प्रकृतियों की स्थितियों के भेद की अपेक्षा स्थिति भेद क्यों नहीं हो सकता, अर्थात हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमने मूल प्रकृतियों में देखा जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक स्थिति के अनेक भेद हो सकते हैं, वैसे ही उत्तर प्रकृतियों में भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक भेद होंगे, और आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो भी भेद होंगे। जैसे मोहनीय के इन जनरल हम कहेंगे तो मिनिमम पॉसिबल से लेकर मैक्सिमम तक मिथ्यात्व का बंध, कम से कम कितना और अधिक से अधिक कितना, तो हम संगी पंचेंद्रियों को लेंगे, कम से कम मिथ्यात्व का बंध कितना होता है, अंत कोड़ाकोड़ी सागर, और उत्कृष्ट 70 कोड़ाकोड़ी सागर। ये एक मोहनीय के भी अपेक्षा कहेंगे और एक मिथ्यात्व की अपेक्षा कहेंगे, और उसी को चाल ये चारित्र मोह के साथ कंपेयर करेंगे, उसके तो 40 कोड़ाकोड़ी है। तो ये दो आपस में भी भेद है, और एक अकेले मिथ्यात्व की बात करेंगे तो उसके भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक भेद है। ये बात यहां बतानी चाहते, फिर ये वाक्य पढ़ूंगी मैं 6 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन। यदि एक प्रकृति की स्थितियों में अपने स्थिति विशेष की अपेक्षा भेद हो सकता है, यानी एक ही प्रकृति में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक अलग अलग भेद हो सकते हैं, तो उत्तर प्रकृतियों की स्थिति में अपने स्थिति भेद की अपेक्षा यहाँ भेद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जैसे मूल में हो सकते हैं, उत्तर प्रकृतियों में भी हो सकते हैं। अभी हम नौ कषाय लेते हैं, हास्यादि की अपनी अपनी जघन्य से उत्कृष्ट स्थिति होगी, तो उसमें भी भेद हो सकते हैं। और क्या भेद हो सकते हैं? अपने से भिन्न अन्य प्रकृतियों की स्थितियों के भेद की अपेक्षा, जैसे चारित्र मोहनीय है और नौ कषाय कर्म, उनके भी अपनी अपनी स्थिति में भेद हो सकेंगे। नौ के नौ नौ कषाय है, उनके भी अपनी अपनी स्थिति अलग अलग होगी, उत्कृष्ट जघन्य जो कुछ है। स्थिति भेद क्यों नहीं हो सकता? अर्थात हो सकता है, क्योंकि एक प्रकृति में अपने स्थिति विशेष की अपेक्षा भेद मानते हुए उत्तर प्रकृतियों की स्थितियों में अपने स्थिति भेद की अपेक्षा और अपने से भिन्न अन्य प्रकृतियों की स्थितियों की भेद की अपेक्षा यदि स्थिति भेद न माना जाए तो विरोध आता है। ये स्थितियां अलग अलग होगी तो ही हम उसको विभक्ति कहकर उनका वर्णन भी आएगा। यहाँ विशेषार्थ प्रश्न यह है कि एक स्थिति को स्थिति विभक्ति पद के द्वारा कैसे संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि विभक्ति का अर्थ ही भेद होता है। क्योंकि जो स्थिति स्वरूपतः एक है उसमें भेद की कल्पना नहीं की जा सकती है, स्वरूपतः ने अपने पने से इसका कई प्रकार से समाधान किया है। प्रथम तो यह बतलाया है कि स्थिति एक होकर भी उसमें प्रकृति और प्रदेशों की अपेक्षा भेद संभव है। पहले स्थिति एक मानी है और प्रकृतियां अलग अलग और प्रदेशों की अपेक्षा भेद कहा, इसलिए एक स्थिति को भी स्थिति विभक्ति कहा है। फिर भी यह समाधान स्थिति की मुख्यता से नहीं हुआ, इसलिए अन्य प्रकार से इस प्रश्न का समाधान किया गया है। पहले स्थिति विभक्ति यानी स्थिति एक रखते हुए प्रकृति और प्रदेशों का भेद किया, परंतु वो स्थिति का भेद कहाँ हुआ, इसलिए अब दूसरे प्रकार से समाधान कर रहे। तो इसमें बताया है कर्म 8 है और उनमें से यहाँ मुनि की मूल प्रकृति स्थिति विवक्षित है, यतः वह अन्य ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति स्थिति से भिन्न है, इसलिए यहाँ मूल प्रकृति स्थिति के साथ विभक्ति पद जोड़ा गया है। ये दूसरा समाधान। पहला समाधान क्या है, स्थिति तो एक है, प्रदेशों की और प्रकृतियों की भिन्नता है, इसलिए भेद किया। दूसरा समाधान, अन्य जो मूल प्रकृतियां हैं ज्ञानावरणादि अंतराय आदि जो है नाम गोत्र है, उनकी स्थिति और या मोहनी की स्थितियां इनमें भेद है, इसलिए भी यहाँ विभक्ति शब्द जोड़ दिया है। इस प्रकार यह शंका का उत्तर तो हो जाता है, पर इससे एक स्थिति का स्वरूपगत भेद समझ में नहीं आता, यानी यहाँ भी अन्य प्रकृति के साथ तुलना हुई है, परंतु स्थिति के भेद इसमें भी समझ में नहीं आते, स्थिति तो एक ही एक गिनी। इसलिए आगे इसे प्रकट करने के लिए चौथे प्रकार से समाधान किया गया है। इसमें बतलाया है जब मूल प्रकृति स्थिति में उत्कृष्ट आदि भेद संभव है। कौन कौन से भेद देखे थे हमने, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य और अजगन्य, चार भेद मूल प्रकृति में हो सकते हैं प्रकृति स्थिति में, तब उसके साथ विभक्ति पद जोड़ने में क्या बाधा है, और इसको प्रश्न चिन्ह करो, बाधा है कि बाधा। इस प्रकार एक स्थिति विभक्ति है और अनेक स्थिति स्थिति विभक्ति है, या अनेक स्थितियां चाहिए विभक्ति हैं चाहिए, जैसे मूल में उन्होंने लिखा था, यह सिद्ध होता है। पहले तो स्थिति एक होकर प्रकृति और प्रदेश की अपेक्षा भेद, यानी प्रकृति और प्रदेश ये दो अलग लिए देखता है। कर्म 8 है अपने अपने मूल प्रकृति के भेद से, यानी वो पहले में ही दो भेद किए, प्रकृति की अपेक्षा और प्रदेशों की अपेक्षा, वो दो कर दिए उन्होंने। और फिर लास्ट में वो जगन्य से उत्कृष्ट तक भेद होते हैं उसको ले लिया उन्होंने, दो पॉइंट एक में लिए उन्होंने, प्रकृति भेद और प्रदेश भेद। वो तो दो मूल प्रकृतियों में भेद, वो तीसरा हो गया। हाँ देखो, यहाँ जो हमने देखी थी मूल प्रकृतियों में ही उसके उत्तर प्रकृति के भेद गर्भित है, ये बात पहले बताते ही थे, परंतु एक स्थिति को स्थिति विभक्ति कैसे कहते हैं, अगर वो लेना है तो उसमें वो अनेक उत्तर प्रकृतियों के भेद उसमें गर्भित है ऐसा भी ले सकते हैं, मूल प्रकृति के हाँ उसमें उत्तर प्रकृतियों का भेद गर्भित है। और लास्ट में यहाँ जो बताया था वो तो जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक भेद होते हैं, वो भी बताया। अब आगे बढ़ेंगे। तथ्य अनियोगत दाराणी, अब मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति के विषय में अनुयोग द्वार कहते हैं। दो अलग अलग है ना, मूल प्रकृति विभक्ति स्थिति विभक्ति और उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति। अनुयोग द्वार नहीं, इसमें जो कोई अलग अलग चैप्टर्स होंगे उसके तो उसका कथन करेंगे। इसमें मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति के विषय में अनुयोग द्वार कहना चाहिए, अन्यथा उसकी प्ररूपणा नहीं हो सकती। अनुयोग द्वार किसे कहते हैं, उसका समाधान, कहे जाने वाले अर्थ के जानने के उपायभूत अधिकार को अनुयोग द्वार कहते हैं। यानी अलग अलग विषयों के जो अलग अलग अधिकार है, मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति का कथन होगा, परंतु वो अनेक उसमें अपेक्षाएं बताएंगे, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वो बताए, ध्रुव अध्रुव बताएंगे, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व वगैरह बताएं। ये जो अलग अलग अधिकार है नाना जीवों की अपेक्षा, वो जो अलग अलग विषयों के अपेक्षा मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति का वर्णन होगा अनेक बिंदुओं की अपेक्षा, उसको अनुयोग द्वार कहते हैं। अब वो आगे का सूत्र, ये अनुयोग द्वार कौन कौन से है वो यहाँ बता रहे हैं। सव विहत्ति, नो सव विहत्ति, उपकस विहत्ति, अनुपकस विहत्ति, जहन्न विहत्ति, अजहन्न विहत्ति, सादीय विहत्ति, अनादीय विहत्ति, ध्रुव विहत्ति, अध्रुव विहत्ति, एय जीवेण सामित्तम कालो अंतरम, नाना जीवे ही भंग विचवो परिमाणम खेतम पोषणम कालो अंतरम सन्नियासो अप्पा बहुवम च भुजगारो पदनिखेवो वड्ढी च। इतने सारे अनुयोग द्वार कौन कौन से हैं, हिंदी में देखते हम, यथा सर्व विभक्ति, नो सर्व विभक्ति, उत्कृष्ट विभक्ति, अनुत्कृष्ट विभक्ति, जघन्य विभक्ति, अजघन्य विभक्ति, सादी विभक्ति, अनादि विभक्ति, ध्रुव विभक्ति, अध्रुव विभक्ति, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व काल और अंतर। यानी एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, एक जीव की अपेक्षा काल, एक जीव की अपेक्षा अंतर, तथा नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, सन्निकर्ष और अल्पभूतव, तथा भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि। कितने हुए, 24 हुए। पहले भी हम देख चुके ना इसमें से, उसमें केवल वो सर्व विभक्ति न सर्व उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वो नहीं था, बाकी ध्रुव अध्रुव वगैरह तो हमने देखे थे, ये बाकी बातें तो उसमें भी थी, हमने जो प्रकृति विभक्ति देखी थी उसमें। ये मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति के विषय में अनुयोग द्वार होते हैं, ये 24 अनुयोग द्वार होंगे अभी इसमें, और इन 24 का वर्णन चलेगा। इस सूत्र में जो अंत में च शब्द आया है वह उक्त अर्थ के समुच्चय के लिए आया है, तथा अल्पभूत पद के अंत में जो च शब्द स्थित है वह अनुक्त अर्थ के समुच्चय के लिए आया है। इस च शब्द के द्वारा इन उपर्युक्त अनुयोग द्वारों में अनुक्त, उसमें जो नहीं बताया है, अनुक्त उक्त ने बताया हुआ, अनुक्त ने जिसका कथन नहीं किया परंतु जो गर्भित है, ऐसा अध्याच्छेद अनुयोग द्वार तथा भागा भाग और भाव अनुयोग द्वारों का ग्रहण किया है। ये तीन और जोड़ना, कौन से, अध्याच्छेद, भागा भाग और भाव अनुयोग। हाँ 27 हो जाएगी। यद्यपि यहाँ मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति में सन्निकर्ष अनुयोग द्वार संभव नहीं है, तो भी वह यहाँ पर कहा गया है क्योंकि उत्तर प्रकृतियों में उसकी संभावना देखी जाती है। ये उत्तर प्रकृतियों का कथन, फिर भी सन्निकर्षण है उसका, आपस में एक है तो दूसरा है क्या, नहीं है, कितना है क्या है, उसकी जो बात होती है उसको सन्निकर्ष कहते हैं, तो वो उत्तर प्रकृतियों में लागू होती है, फिर भी उसका यहाँ कथन कर दिया है। शंका, सन्निकर्ष अनुयोग द्वार को यहाँ न कहकर वही उत्तर प्रकृतियों के प्रकरण में क्यों नहीं कहा है, उसका समाधान, यह ठीक है क्योंकि सन्निकर्ष अनुयोग द्वार को वही उत्तर प्रकृतियों के प्रकरण में ही कहा है, यहाँ मूल प्रकृति के प्रकरण में नहीं। फिर शंका, यदि ऐसा है तो यहाँ से उसे क्यों नहीं अलग कर दिया जाता, तो इसमें अनुयोग द्वार में उसका नाम क्यों लिया है, उसका समान नहीं, क्योंकि मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति और उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति इन दोनों के विषय में साधारण रूप से ये अनुयोग द्वार कहे गए हैं, इसलिए इनमें स्थित सन्निकर्ष को अलग करने का कोई कारण नहीं है। दोनों के लिए ये अनुयोग द्वारों के यहाँ नाम लिखे हैं। अब ये सन्निकर्ष वाला मूल प्रकृतियों में नहीं एप्लीकेबल है, लागू नहीं होता है, तो उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति में तो उसका होगा, तो इनके नाम यहाँ पर सामान्य तरीके से रख दिए हैं। एदानी चेव उत्तर पयड़ी स्थिति विभक्तिये कादववाणी, आगे बता ही दिया, उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति के विषय में ये ही अनुयोग द्वार कहने चाहिए, इसलिए सन्निकर्ष यहाँ लिख दिया है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि न्यूनता और अधिकता से रहित ये सभी अनुयोग द्वार उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति के विषय में संभव है। अब इन अनुयोग द्वारों के द्वारा मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति का कथन करते हैं। ये अलग अलग इतने अधिकार हो गए, उन अधिकारों के द्वारा मूल प्रकृति स्थिति का वर्णन होगा विभक्ति का। यथा जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से अध्याच्छेद दो प्रकार का है। अध्याच्छेद यानी काल उसका, आपका प्रश्न है उसका काल, उसमें क्या फर्क है। मेरे ख्याल से अध्याच्छेद यानी टोटल उसकी स्थिति, और वो एक जीव की अपेक्षा कितने काल तक उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, देखेंगे हम क्या आता है आगे। उत्कृष्ट अध्याच्छेद काल में उसको आगे देखना पड़ेगा। एक जीव की अपेक्षा काल में वो बात आएगी आगे। अध्याच्छेद काल को ही कहते हैं, परंतु काल वाला जो अलग लिया है हाँ, वो काल यानी ऐसा लेना, वहां उत्कृष्ट का काल, जघन्य का काल, उत्कृष्ट कितने समय तक रहेगा, जघन्य कितने, वो काल में लेंगे। अध्याच्छेद का प्रकरण उसमें आया है। हाँ, प्रस्तावना उसमें, हाँ, क्योंकि इसकी प्रस्तावना उसमें है, चौथे में है, उन्होंने लिखा है इसमें, उसका जो प्रकरण है चौथे के उसमें लिखा है। देखो हम पढ़ेंगे उसमें से, ये तीसरे के प्रस्तावना में कहीं लिखे उन्होंने ये बात। देखो ये जो तीन नंबर है ना पेज, जहाँ वो फोटो वगैरह छपे उसके बाद वाला, उसमें नीचे से एक दो तीन चार, नीचे से चौथा पैराग्राफ जो दो लाइन का है, इस भाग में स्थिति विभक्ति नामक अधिकार आया है जो अपूर्ण है, वह चौथे भाग में पूर्ण होगा, इसलिए उसके संबंध में संपादकीय वक्तव्य वगैरह चौथे अधिकार में दिया जाएगा। चौथे अधिकार में उस संबंध में संपादकीय जो वक्तव्य है वो उसमें है। अब सबके हाथ में पुस्तक तो नहीं होगी, विषय परिचय में अर्धा छेद की बात है। आपको निकालने के दोनों पुस्तक का ये सभी जो है, हाँ कल लाओ चलेगा। हाँ चौथा भाग भी लाना, क्योंकि वो पांच छह पेजेस है। हर एक अनुयोग द्वार का जो नाम है और उसका वर्णन है इसमें। इसमें से थोड़ा पढ़ लेते, आधा छेद देने, या फिर हर एक जन अपने अपने घर से पढ़ कर आओ, मगर वो ऐसा नहीं होता है। आधा छेद का रेफरेंस अभी पढ़ते हैं, हम अभी आधा छेद को पढ़ते हैं। आधा शब्द स्थिति के अर्थ में कालवाची है, कितनी काल का स्थिति बनती है उसको आधा कहेंगे। तदनुसार आधा छेद का अर्थ काल विभाग होता है। यह जघन्य और उत्कृष्ट भेद से दो प्रकार का है। मोनीय सामान्य का उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है, यह विदित है। इसलिए मोनीय सामान्य का उत्कृष्ट अद्धा छेद उक्त प्रमाणे ने 70 कोड़ाकोड़ी सागर, इसमें 7000 वर्ष आबादा काल के भी सम्मिलित है। क्योंकि ऐसा नियम है कि कर्म का बंध होते समय स्थितिबंध के अनुसार उसकी आवादा पड़ती है। हमने ये भी पहले सीखा है कर्णानियोग के प्रकरण में, कितने स्थिति के लिए कितनी आवादा याद है, अभी निकालो ना। 70 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए 7000 यानी 1700, तो एक कोड़ाकोड़ी के लिए 100। वर्ष यदि अंतकोड़ाकोड़ी सागर के भीतर स्थितिबंध होता है तो अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा पड़ती है। एक कोड़ाकोड़ी के लिए 100 वर्ष, कोड़ाकोड़ी के लिए, और अंतकोड़ाकोड़ी के लिए एक अंतर्मूर्त, और 100 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबंध होता है। 100 कोड़ाकोड़ी कैसा लिया, तो 100 वर्ष प्रमाण आबाधा पड़ती है। एक कोड़ाकोड़ी के लिए 100 वर्ष है, क्योंकि हम 70 कोड़ाकोड़ी करते हैं ना। आगे इसी अनुपात से आबाधा काल बढ़ता है, इसलिए 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंध के होने पर ये एक कोड़ाकोड़ी चाहिए। 100 कोड़ाकोड़ी हो ना, उसका आबाधा काल 7000 वर्ष प्रमाण बतलाया। विशेष खुलासा इस प्रकार, किसी भी कर्म का बंध होने पर वह अपनी स्थिति के सब समयों में विभाजित हो जाता है। कितनी स्थिति बांधी उसमें उसका निश्चय रचना हो जाती है। मात्र बंध समय से लेकर प्रारंभ के कुछ समय ऐसे होते हैं जिनमें कर्मपुंज नहीं प्राप्त होता, उसकी जो निश्चय रचना बनती है आबाधा काल में कोई निश्चय रचना नहीं होती। जिन समयों में कर्मपुंज नहीं प्राप्त होता उन्हें आबाधा काल कहते हैं। इस आबाधा काल को छोड़कर स्थिति के शेष समयों में उत्तरोत्तर विशेष हीन क्रम से कर्मपुंज विभाजित होकर मिलता है, यानी जो निषेक रचना होगी आबाधा के बाद वाला, पहला निषेक, दूसरा निषेक, तीसरा निषेक से अंतिम तक, तो उसमें परमाणु की संख्या क्रम से घटती चली जाती। पहले निषेक में सबसे सर्वाधिक है और ऊपर एक एक चय, यानी एक एक विषय, एक चय कहते ना उसको विशेष, उतना कम होगा। उदाहरणार्थ मोनीय कर्म का 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबंध होने पर बंद समय से लेकर 7000 वर्ष तक सब समय खाली रहते हैं, यानी उस समय जो बंधे हुए परमाणु उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात चल रही है। पहले बंधे हुए वहां पर पड़े हैं उसकी बात नहीं है। उसके बाद अगले समय से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक के काल के जितने समय होते हैं विवक्षित मोहनीय कर्म के, उतने विभाग होकर जितने कर्म परमाणु बंधे, अनंत बंधे हैं, तो 70 कोड़ाकोड़ी के हर एक समय में उसका विभाजन होगा। 7000 वर्ष के बाद प्रथम समय के बंटवारे में जो भाग आता है वह सबसे बड़ा होता है। उसके अगले समय के बंटवारे में जो भाग आता है उसके कुछ हीन होता है। इसी प्रकार 70 कोड़ाकोड़ी सागर के अंतिम समय तक जानना चाहिए, विशेषहीन विशेषहीन, इतना विशेष जानना चाहिए। यहाँ पर मुनि की जो उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर कही है, वह 70 कोड़ाकोड़ी सागर के अंतिम समय के बंटवारे में प्राप्त होने वाले द्रव्य की अपेक्षा से कही है। क्या कहते हैं? एक समय में अनंत परमाणु बंधे हैं, अभी अभी हमने देखा 7000 वर्ष और एक समय से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक के अंतिम समय तक निषेक रचना हुई। तो जब हमने 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति बंधी ऐसा कहा, वो अंतिम निषेक की अपेक्षा कहा। जितने अनंत परमाणु बंधे उन सभी में इतनी स्थिति नहीं बंधी, क्योंकि पहले निषेक वाले परमाणु की कितनी स्थिति बंधी? 7000 और एक पर एक समय, फिर 7000 वर्ष और दो समय, 7000 वर्ष और तीन समय, प्रत्येक परमाणु की स्थिति अलग अलग बंधी। तो ये हम इतनी स्थिति बनती ऐसा जब कहते हैं तो अंतिम निषेक की अपेक्षा कहते हैं। वस्तुतः आबादा काल के बाद जिस समय के बंटवारे में जो द्रव्य आता है उसकी उतनी ही स्थिति जाननी चाहिए, यानी एक समय में इतनी स्थितियां अलग अलग बंदी, हर एक समय की एक एक स्थिति बंदी। स्थिति के अनुसार बंटवारे का यह क्रम सर्वत्र जानना चाहिए। इस प्रकार मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट अध्याच्छेद का विचार किया। मोहिनी कर्म का जघन्य अध्याच्छेद एक समय प्रमाण है, यह स्थिति की बात है, बंधने की नहीं, क्योंकि एक समय वाला बंध तो नहीं होगा। यह क्षपक सूक्ष्म सांप्राय जीव के अंतिम समय में सूक्ष्म लोक के उदय स्थिति के समय प्राप्त होता है। यहाँ उदय की स्थिति ली, वहां बंधने की स्थिति की अपेक्षा कहा था। सत्ता में कितनी है तो एक स्थिति बाकी है, तो एक समय वाली कहेंगे। मोहिनी की उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अध्याच्छेद मोहिनी सामान्य के समान 70 कोड़ाकोड़ी सागर है, तथा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अध्याच्छेद अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ाकोड़ी सागर है, क्योंकि ये दोनों बंध प्रकृतियां न होकर संक्रम प्रकृतियां हैं। तो संक्रमित हुआ तो भी वो 70 कोड़ाकोड़ी वाली स्थिति की नहीं, बंदी फिर अंतर्मूर्त के बाद उसमें जो कोई चेंज हुआ। इसलिए जिस जीव ने मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध करके उसका कांडक घात किए बिना अंतर्मूर्त काल के भीतर वेदक सम्यक्त को प्राप्त किया है, उसके वेदक सम्यक्त को प्राप्त करने के प्रथम समय में, हमने पहले इसका ये विचार आया था अपने को कि सम्यक मिथ्यात्व वो तो अंत कोड़ाकोड़ी हो जाती है, तो प्रथमोपशम करने वाले के तीन करण परिणाम होते हैं, तो उसमें वो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में, यानी पहले में पहले तो प्रायोगिक लब्धि में एक स्थिति कांडक घात करता है और स्थितियां सभी अंत कोड़ाकोड़ी की हो जाती है, और बाद में उसमें से वो दो प्रकृतियां बनती है। अब यहां कौन सा जीव लिया? पहले 70 कोड़ाकोड़ी का बंध किया और अंतर्मूर्त के बाद वेदक सम्यक्त को प्राप्त किया, तो अंतर्मूर्त के बाद किया ना, तो इसलिए अंतर्मूर्त कम कर दिया उसके, भले वो आबादा में ही चला गया, फिर भी उसके जो परमाणु अंतिम निषेक में पड़े थे अभी उतना वो आगे चला गया ना, अंतर्मूर्त आगे चला गया, तो उसकी स्थिति उतनी घट गई, तो अंतर्मूर्त कम कर दिया उसका, और वो परमाणु इसमें टर्न हो गए सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व में। तो वेदक सम्यक्त को प्राप्त करने के प्रथम समय में अंतर्मूर्त कम मिथ्यात्व के सब निषेकों का कुछ द्रव्य, अंतर्मूर्त में तो आबादा वाले ही थे उसकी तो बात ही नहीं है, अब उतने ऊपर जो कुछ थे, क्योंकि अंतर्मूर्त के ऊपर कहाँ थे, तो उसमें से भी वो जिसको कहते हैं ना अपकर्षण आदि के द्वारा नीचे आते हैं, तो वहां भले है ऐसा हम कहेंगे, तो प्रत्येक निषेक में से कुछ कुछ परमाणु टर्न होते हैं, तो अंतिम निषेक में से भी कुछ परमाणु टर्न हो गए, संक्रमित हो गए, तो कहते हैं सब निषेकों का कुछ द्रव्य संक्रमण के नियमानुसार संक्रमण होता है, तो सभी निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु संक्रमित होते हैं, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व रूप से संक्रमित हो जाता है। इसलिए इन दो प्रकृतियों का उत्कृष्ट अध्याच्छेद अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण प्राप्त होता है। 16 कषायों का उत्कृष्ट अध्याय छेद 40 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है, क्योंकि अभी ये 40 कोड़ाकोड़ी बताते हैं। यहां भी हमने देखा है 16 कषायों के जो है संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के, ये उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त ही होते हैं। एक इंद्रियों के तो मैक्सिमम वो 70 कोड़ाकोड़ी, तो ये एक सागर होता है और उसके अनुपात में बाकी कर्म बनते हैं। जहां इसको 40 कोड़ाकोड़ी वहां 4 सप्तमांश सागर होगा। आप कहेंगे अच्छा ना, एक इंद्रियों में रहेंगे, मार्ग नहीं आगे कोई है। तो कहते संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के इन कर्मों का इतना उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। 9 कषायों का उत्कृष्ट अध्याय छेद 1 आवलिकम 40 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। 40 कोड़ाकोड़ी, क्योंकि उनका इतना उत्कृष्ट बंध नहीं है, फिर भी जो कषाय है वो इसमें टर्न होते होंगे। क्या लिखा है देखते हैं। यद्यपि 9 कषाय बंध प्रकृतियां हैं, पर बंध से इनकी उक्त प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नहीं प्राप्त होगी। बंध उनका कम स्थिति वाला है, बंध की अपेक्षा 40 कोड़ाकोड़ी घटित नहीं होगा। तो 40 कोड़ाकोड़ी कब घटित होगा? 40 कोड़ाकोड़ी के कषाय कर्म बंधे, और उनका आवली के पहले तो कुछ नहीं होता, आवली के पश्चात उसका संक्रमण हुआ। बंधावली में कुछ नहीं होता उसका, तो आवली के बाद उसका संक्रमण हो गया, तो उस अपेक्षा से 9 कषाय कर्मों में भी इतनी स्थिति आवली कम 40 कोड़ाकोड़ी घटित होती है। परंतु यह उत्कृष्ट अध्याय संक्रमण से प्राप्त होता है। यहां इतना विशेष जानना चाहिए, जब 16 कषायों का उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, तब नपुसक वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा का नियम से बंद होता है। उस समय स्त्री वेद पुरुष वेद हास्य रति का बंध नहीं होता हो, यानी 16 कषायों का उत्कृष्ट जिससे बंद होता है, उस समय अन्य मोहिनी की कौन सी बनती है? तो नपुसक वेद बनता है, अरति शोक भय जुगुप्सा बनते हैं। इसलिए नपुसक वेद आदि 5 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अध्याय छेद 16 कषायों के उत्कृष्ट स्थिति बंध के समय भी संभव है। क्योंकि मान लीजिए किसी जीव ने 16 कषायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध प्रारंभ किया, तो अंतर्मूर्त तक होगा ना, और उस समय वह नपुसक वेद आदि का भी बंध कर रहा है, इसलिए वह जीव 1 आवली के बाद 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति को नपुसक वेद आदि में संक्रमित भी करने लगेगा। नपुसक वेद का भी बंध हो रहा है, तो ये जो उत्कृष्ट स्थिति है 9 कषायों की, उसमें भी संक्रमित होता है। अतः 16 कषायों के बंध काल के भीतर ही नपुसक वेद आदि का उत्कृष्ट अध्याय छेद बन जाएगा, पर स्त्रीवेद आदि का उस समय तो बंध होता ही नहीं। स्त्रीवेद का बंध नहीं हो रहा है, जब ये उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है तब स्त्रीवेद का बंध नहीं हो रहा है, इसलिए 16 कषायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध कराकर और उससे निवृत्त होकर स्त्रीवेद आदि 4 का बंध करावे और 1 आवलिकम 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का संक्रमण करा के इनका उत्कृष्ट अध्याय छेद आवलिकम 40 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण प्राप्त करें। यानी उनका एक साथ बंध होता है, इसलिए उसमें डायरेक्ट 40 कोड़ाकोड़ी होगा, और इसमें उनका बंध रुक जाएगा, और बाद में स्त्रीवेद का बंध योग्य परिणाम होगे, वहाँ पूर्व में बंधे हुए जो है आवलिकम 40 कोड़ाकोड़ी उनका संक्रमण होगा। ये तो बात इसमें आगे आएगी शायद। स्त्री वेद आदि 4 प्रकृतियों की कहीं कहीं पुण्य प्रकृतियों के साथ परिगणना की जाती है, इसका बीज यही है। यह उत्कृष्ट अध्याय छेद है। अभी संक्रमण से, हाँ, ये विषय चल रहा है। देखो यह बात ये चल रही है, पहले हमने 70 कोड़ाकोड़ी की बात देखी, सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व का बंध तो नहीं होता है, परंतु 70 कोड़ाकोड़ी का बंध होने के एक अंतर्मूर्त बाद जो वेदक सम्यक तो प्राप्त करता है, उसके जो अंतिम निषेक में से जो कोई संक्रमण होगा उसकी स्थिति उतनी ही बनेगी उसकी। ये तो वहां हो गए। अब ये जो चारित्र मुनि की 40 कोड़ाकोड़ी स्थिति बनती है, जो 16 कषायों का उत्कृष्ट बंद कर रहा है, उसके स्त्री वेद पुरुष वेद आदि नहीं बनते। उस समय नपुसक वेद बंधेगा, उस समय की बात है। जिस समय 40 कोड़ाकोड़ी सागर का बंद हो रहा है 16 कषायों का, उसी समय हाँ नपुसक वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा ये इनका बंद होगा। हास्य रति पुरुष वेद स्त्री वेद का बंद नहीं होगा। हाँ ये पॉइंट नया है, इसलिए वहां क्योंकि देखो ये संक्रमण वगैरह में तो बंद की भी बात आती है, उसकी अपेक्षा रहती है। इसलिए वहां तो 40 कोड़ाकोड़ी डायरेक्ट जब तक क्योंकि बंद चल रहा है और नपुसक वेद का भी बंद हो रहा है, तो उसका संक्रमण 40 कोड़ाकोड़ी का होगा। परंतु जो स्त्री वेद का बंद कर रहा है नहीं नहीं उनका कम है, कषाय है वो नौ कषाय रूप संक्रमित हुए, संक्रमण की अपेक्षा 40 कोड़ाकोड़ी घटित होता है। अब जो 40 कोड़ाकोड़ी का जिसने बंद किया है 16 कषायों का, उस समय स्त्री वेद तो नहीं बन रहा है, तो समझो वो अंतर्मूर्त में आवली में जो कोई उनका बंद रुक गया, अब स्त्री वेद का बंद प्रारंभ हुआ, तब जाकर वो पूर्व में बंधे हुए 40 कोड़ाकोड़ी संक्रमित हो गए। तो वो जो आवली काल बीत गया ना, उसका बंद रुक गया और अभी कम स्थिति वाला बंधने लगा, अनुत्कृष्ट बंधने लगा, उस समय स्त्री वेद का बंद हो सकता है। जब स्त्री वेद का बंद होने लगा तो वो 40 कोड़ाकोड़ी में एक आवली कम वो परमाणु स्त्री वेद रूप से संक्रमित हुए, इसलिए स्त्री वेद का जो उत्कृष्ट स्थिति आवलिकम 40 कोड़ाकोड़ी, और जो नपुसक वेद बांध रहा था उसके तो 40 कोड़ाकोड़ी भी घटित होगा। हाँ पुरुष वेद स्त्री वेद सेम होगा। कौन सा काल? अर्धा छेद का ही अर्थ, जो हम कितनी स्थिति बांधते हैं उसी को अर्धा छेद कहा, और काल में अलग आएगा। जैसे एक जीव उत्कृष्ट स्थिति बंध कितने काल तक करेगा, एक समय के लिए, दो समय के लिए। हाँ देखो और थोड़ा है आधा पैराग्राफ। इन प्रकृतियों के जघन्य अध्याचेत का विचार करने पर, हमने अभी उत्कृष्ट देखी थी और जघन्य की बात करें, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और 12 कषाएं ये स्वोदय से क्षय होने वाली प्रकृतियां नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? अपने रूप से उदय में आकर क्षय होने वाली प्रकृतियां नहीं है। जैसे दसवें गुणस्थान में लोभ का क्षय होता है, उदय किसका चल रहा है? दसवें गुणस्थान में लोभ का ही उदय हो रहा है ना। एक एक निषेय उदय होकर एक एक निषेय खिर जाएगा और उसका क्षय हो जाएगा। इसको कहते हैं स्वोदय से क्षय होना, स्व उदय से क्षय होना। मिथ्यात्व का अपना उदय रहते हुए क्षय होगा कि नहीं होगा? मिथ्यात्व का क्षय कब होता है? जब क्षायिक समय दृष्टि होता है तो मिथ्यात्व का क्षय होता है। तो क्षय होता है ना, क्या होता है? सम्यक मिथ्यात्व रूप और सम्यक प्रकृति रूप टर्न हो जाता है, संक्रमित होकर क्षय हो जाता है। मिथ्यात्व का उदय होता रहे तो मिथ्यात्व गुणस्थान में रहेगा, उसका क्षय होने का सवाल ही नहीं है। अनंतानुबंधी का भी अपने रूप से उदय होता रहे और क्षय हो जाएगा, ऐसी बात नहीं बनती, वो अन्य कषाय रूप से टर्न हो जाता है। तो यही बात यहां कहते हैं कि जो मिथ्यात्व है सम्यक मिथ्यात्व भी अपने रूप से उदय में आकर क्षय नहीं होगा, और जो 12 कषायें हैं, कौन सी 12? संज्वलन के बिना अन्य जो है, संज्वलन अपने रूप से उदय आकर क्षय होगा। क्योंकि जब हम क्रोध का क्षय होता है कहते हैं तो क्रोध का उदय भी चल रहा है और वो सारे मान रूप हो जाते हैं, अपने स्वोदय रूप से होता है। इसलिए जब इनकी अपनी अपनी क्षपणा के अंतिम समय में क्षपणा हो रही है, नहीं संक्रमित होकर क्षपणा हो रही है, उनके अंतिम समय में दो समय काल वाली एक निषेक स्थिति शेष रहती है, तब इनका जघन्य अध्याच्छेद होता है। अभी देखो, अभी मिथ्यात्व की बात करेंगे। अन्य रूप से उदय यानी प्रकृति में टर्न होती है, तो जब ये इसके दो निषेक बाकी है, मिथ्यात्व है सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व है तो सम्यक प्रकृति रूप होती है। हाँ देखो, ये बात ऐसी है, पहले में पहले तो कांडकों में संक्रमण होता है, परंतु जब एक आवली बाकी रहती है तो एक एक निषेक संक्रमित होता है। तो अभी मिथ्यात्व के दो निषेक बाकी है और उसका संक्रमण चल रहा है, तो उसकी स्थिति की दो निषेक बाकी है और अभी उसका संक्रमण होने पर वो एक समय वाली बाकी रहेगी, उसका उदय तो होगा नहीं उसका, तो इसलिए कहते हैं दो समय काल वाली। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय जो है वो तो सम्यक प्रकृति का उदय है। देखो यहाँ सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है और यहाँ पर मिथ्यात्व की दो स्थितियां हैं। अब इसका जो है वो इस रूप परिणमित, और ये तो ये वर्तमान है और ये वर्तमान के ऊपर ये यहाँ पड़ी है, मिथ्यात्व की अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति है उसके, उसका समय कितना है? दो समय। और सम्यक प्रकृति का ये वर्तमान है, वो भले उसके अनेक स्थितियां पड़ी है वहां, 8 वर्ष की हो या जो ज्यादा, इसका तो ये वर्तमान समय है। और मिथ्यात्व की जो अंतिम अभी एक निषेक बाकी है उसका काल कितना है? वो दो समय ऊपर है ना, तो ये दो समय स्थिति वाली एक निषेक है। अब ये जो वर्तमान रूप होकर इसमें उदय में आ जाएगी तो नष्ट हो जाएगी, मिथ्यात्व रूप से नष्ट हो जाएगी। नहीं समझे? अच्छा, यहाँ ये बात बता रहे थे कि जो जो प्रकृतियां स्वोदय से क्षय नहीं होती, कौन कौन सी है ऐसी? मिथ्यात्व का उदय होकर उसका क्षय नहीं होगा, उसका संक्रमण होकर क्षय हो जाएगा, तो उसका जगन्य एक समय कैसे घटित होगा? उसकी एक निषेक स्थिति रह जाती है और उसका काल कितना है? दो समय काल वाली एक स्थिति का अर्थ क्या है? देखिए पाटी पर देखेंगे ना, यहाँ मिथ्यात्व है और ये सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, हम डायरेक्ट अभी सम्यक प्रकृति को देख रहे हैं। पहले में कांडकों के द्वारा इसका सम्यक प्रकृति रूप से टर्न होना चल रहा था, बड़े बड़े कांडक होते थे, अब होते होते क्या हुआ, अब ऐसी पोजीशन आ गई, ये सम्यक प्रकृति इतना रह गया और मिथ्यात्व का टर्न होकर वो उदय में आ रहे हैं, है ना? तो यहाँ जो मिथ्यात्व के परमाणु पड़े थे वो तो वर्तमान उदय रूप तो नहीं होते, ये टर्न होते होते एक आवली काल इतने बाकी रहे, हम आवली के बदले इसको 4 लेते हैं, सम्यक प्रकृति के तो ज्यादा है, तो इसमें से क्या होगा? एक एक निषेक है वो टर्न होकर सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आएगा, फिर ये निषेक भी टर्न होकर उदय में आया। अभी जब ये भी निषेक समाप्त हुआ, अभी ये बाकी है यहाँ, ये मिथ्यात्व का अंतिम है और इस समय सम्यक प्रकृति तो उदय रूप है, तो वर्तमान समय ये सम्यक प्रकृति का चल रहा है और एक समय वाली जो मिथ्यात्व की स्थिति है वो भविष्य में दूसरे समय में पड़ी है, वर्तमान में नहीं है, वो तो सम्यक प्रकृति रूप हो गई। अभी वर्तमान में सम्यक प्रकृति का उदय है, वर्तमान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, उसकी स्थिति भी नहीं है। मिथ्यात्व की स्थिति कहाँ है? दूसरे समय में पड़ी है, आगे के समय में वो सम्यक है, मिथ्या सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आने वाली है। तो ये जो मिथ्यात्व की एक ही स्थिति अभी सत्ता में है उसका काल दो समय, दो समय काल वाली एक स्थिति है, ऐसा कहें। तो क्या है, जब इनकी क्षपणा के अंतिम समय में, दो समय काल वाली एक निषेक स्थिति शेष रहती है, यानी एक निषेक बाकी रहता है, तब इनका जघन्य अध्याच्छेद होता है। तो एक ही निषेक है परंतु उसका समय दो। अब जो सोदय से क्षय होने वाली कौन सी है, सम्यक प्रकृति और लोभ संज्वलन अपने रूप से उदय में आकर क्षय हो जाता है, एक एक निषेक खिरता है। तो इनका नियम से सोदय से ही क्षय होता है, तथा स्त्रीवेद और नपुसक वेद ये भी स्वोदय से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। हमने देखा स्त्रीवेद वाला था जीव, उसका अंतिम निषेक खिर गया, उसका उदय भी समाप्त हुआ और उसका क्षय भी हो गया। अतः जब इनकी क्षपणा के अंतिम समय में एक समय काल वाली एक निषेक स्थिति रहती है, तब इनका जघन्य अध्याच्छेद होता है। ये बात समझ में आई, उसका एक निषेक स्थिति, उसका समय दो थे, दो समय वाले थे, और जो स्वोदय से जाती है उसका एक वर्तमान वाली है, अपने रूप से उदय में आती है। एक तो क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन और पुरुष वेद, इनका क्षपक श्रेणी में अपनी अपनी उदय विच्छित्ति के अंतिम समय में पूरा सत्वनाश नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं, जब उदय रुकता है तो सत्ता में अभी पड़ा है जो नया बंधा हुआ है। हमने देखा था पुरुष वेद का उदय तो मिट गया, पांच प्रकृति वाला हुआ ना, और उदय मिट गया, अपगत वेदी हुआ, फिर भी पुरुष वेद के परमाणु है, वो पांच प्रकृति की सत्ता वाला रहा दो समय कम दो आवली काल तक। तो कहते हैं उदय की तो विच्छित्ति हुई परंतु सत्ता की नहीं हुई। ये तो आगे आने वाली बात है। दूसरे, वहां इनके अपने अपने वेदन काल के अंतिम समय में, वेदन काल यानी उदय का काल, उसके अंतिम समय में नवक बंध के निषेकों के साथ प्रथम स्थिति के निषेक भी शेष रहते हैं, इसलिए इनकी जघन्य स्थिति अपने अपने वेदन काल के अंतिम समय में न कहकर अंत में जो नूतन बंध होता है उसके एक समय कम दो आवली प्रमाण गला देने पर अंत में इन कर्मों की जघन्य स्थिति कही है। जो क्रोध संज्वलन की अंतर्मूर्त कम दो महीना, मान संज्वलन की अंतर्मूर्त कम एक महीना, माया संज्वलन की अंतर्मूर्त कम 15 दिन और पुरुष वेद की अंतर्मूर्त कम 8 वर्ष प्रमाण होती है, यही इनका जघन्य अध्याच्छेद है। यहाँ तो जो अंतिम समय में जो नया बंध हुआ ना उसको लिया है, अभी उसकी चर्चा क्रम से आएगी। वेदन काल यानी उदय काल, ये अध्याच्छेद यानी जो स्थिति बनती है उसकी बात है। हाँ, अभी सभी जो प्रकरण पढ़ने हैं तो लाना पड़ेगा, ये अध्याच्छेद का तो हमने पढ़ लिया है, जो जब प्रकरण आएगा उसको यहाँ से निकाल कर हम पढ़ेंगे। अब यहीं रुकते हैं, जा कल नहीं लाना, ये तीसरे भाग में आगे पढ़ेंगे हम अध्याच्छेद। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत होडो। लक्ष्मी।